ओम शांति। एक सम्राट कभी महात्मा बुद्ध से मिलने जाते हैं, तो वो सोचते हैं कि इतने बड़े व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं तो मुझे उनके लिए कुछ लेके जाना चाहिए। और उनके पास एक अत्यंत बहुमूल्य हीरा होता है, सोचते हैं यही उनको दूंगा। पर कामना यह भी होती है कि मैंने उनको दिया ये लोगों को पता भी तो चले। महात्मा बुद्ध तो बहाना मात्र है, परंतु इतने बड़े सम्राट ने इतना बहुमूल्य हीरा उनको दिया, इससे मेरी ख्याति भी और बढ़ेगी, नाम भी बढ़ेगा, ये भी भाव होता है। तो वो एक हीरा लेके जाते हैं, परंतु जाते जाते सोचते अगर उन्होंने हीरा अस्वीकार किया तो, क्योंकि वो तो सन्यासी है, तो सोचते हैं कुछ साथ में और भी लेके जाना चाहिए। तो एक राजभवन के राज सरोवर का एक अद्भुत बेमौसम का कमल का पुष्प, वो भी वो ले जाते हैं, ताकि यदि ये अस्वीकार किया गया तो ये दे दूंगा। और ये देना भी कोई कम बात नहीं है, क्योंकि ऐसा फूल तो आज तक किसी ने उनको दिया नहीं होगा, इसमें भी महिमा की तो गुंजाइश बहुत है। तो वो पहुंचते हैं और एक हाथ आगे करते हैं और वो हीरा महात्मा बुद्ध को दिखाते हैं और कहते हैं ये आपके लिए है। महात्मा बुद्ध कहते हैं इसको गिरा दो। वो सोचता है शायद इनको ये पसंद नहीं आया। तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है, वो सामने करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं इसको भी गिरा दो। फिर वो उसको भी गिरा देता है और दोनों हाथ खाली या जोड़ के उनके सामने खड़ा रहता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं इसको भी गिरा दो। अब उसे समझ में नहीं आता है किसको गिराऊं, हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और अचानक उसके मन में कोई विचार आता है, कोई संकल्प आता है, कोई टचिंग होती है कि किसे गिराने के लिए कहा जा रहा है। ये फूल को गिराने के लिए नहीं कहा जा रहा है, ना ही हीरे को और ना ही हाथों को और ना ही मुझे, ये अहंकार को गिराने के लिए कहा जा रहा है। और वो तुरंत समझ जाता है और तुरंत नतमस्तक हो जाता है। महात्मा बुद्ध उसे कुछ कहते नहीं है, पर वो समझ जाता है और उसका नया जन्म हो जाता है। और महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ऐसा सदियों में बहुत कम बार होता है कि कोई व्यक्ति इतना जल्दी समझ जाए, क्योंकि ये राज तो ऐसा गहरा राज है कि बड़े बड़े महात्मा योगी पुरुष भी इसे समझ नहीं पाते। गिराना किसको है? अहंकार का गिर जाना ही अध्यात्म की शुरुआत और अध्यात्म का शिखर भी है, दोनों ही चीजें हैं। जो अपने अहंकार के शिखर पर खड़ा है और वो जब गिरता है, चोट बहुत गहरी होती है, तलवार के घाव गहरे हैं या जबान के? जबान के घाव बहुत गहरे होते हैं और उस चेतना पे बहुत अधिक होते हैं जो अभिमान से ग्रसित है। महाभारत में एक दृश्य है, द्रौपदी चीरहरण से बहुत पहले, जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आता है और वो हवा महल, जादुई महल देखता है और एक जगह गिरता है, तो द्रौपदी ऊपर से हंसती है और क्या कहती है, अंधे का पुत्र अंधा। उसके बाद युधिष्ठिर और द्रौपदी का एक संवाद है और युधिष्ठिर बहुत चिंतित है, घूम रहा है, और द्रौपदी आके पूछती है क्या हुआ। वो कहता है क्या तुमने दुर्योधन को ऐसा कहा? वो कहती हाँ, मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, वो आपका अनुज है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, वो हमारा अतिथि है इस समय। और तीसरी बात कि हमने बड़े पिताश्री जो है युधिष्ठिर, उनका भी अपमान कर दिया मैंने। तो क्योंकि अंधे का पुत्र अंधा कहा। युधिष्ठिर कहता है द्रौपदी को, तुम्हारी ये भूल भारतवर्ष को बहुत महंगी पड़ेगी। और वो कहता है कि दुर्योधन अपने अभिमान के शिखर पर खड़ा था, तुमने अभिमान उस शिखर से दुर्योधन को गिराया, निस्संदेह उसे बहुत चोट लगी होगी। और दुर्योधन वो व्यक्ति नहीं है जो वो याद रखे कि उसने दूसरों को कितने दुख दिए, पर वो व्यक्ति है जो दूसरों ने उसको जो दुख दिए उसे कभी नहीं भूलता है, वो उस तरह का व्यक्ति है। तो दुर्योधन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अहंकार से ग्रसित है, इसलिए उसे अभिमान अपमान भी बहुत अधिक महसूस हुआ। तो जितना अधिक अहंकार उतना अधिक अपमान और उतनी अधिक चोटें। अभी अभी जो अव्यक्त वाणी चली थी पिछले संडे 23 तारीख दिसंबर मास 2018, उसका जो दूसरा भाग था, बाबा ने सच्चे सेवाधारियों की निशानी बताई। 9 निशानियां हैं उसमें। एक सच्चा सेवाधारी उसमें कौन सी निशानी होनी चाहिए, और बाबा ने सबसे नंबर 1 पर जो रखी निशानी वो है निर्माणता। निर्माणता अर्थात छोटा न। हिंदी में 2 शब्द है, एक छोटा न वाला निर्माण, एक बड़ा न वाला निर्माण। दोनों में क्या अंतर है? एक है निर्माण अर्थात निरंकारी, और एक है निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन। पर छोटा न वाला जो है उसका एक अर्थ बड़ा न भी है। तो छोटा न 2 तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक है निर्माण अर्थात कोई मान की कामना नहीं, और छोटा न का एक अर्थ यह भी है कंस्ट्रक्शन, मतलब छोटा न का एक अर्थ बड़ा न भी है। छोटे न को 2 रीति से प्रयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्शन की रीति से नव निर्माण का कार्य, तो छोटा न लिखते मतलब निर्माण का कार्य, उसका एक अर्थ वो भी है। पर बड़ा न जो है उसका एक ही अर्थ है कंस्ट्रक्शन। उसका अर्थ वो नहीं है कि नम्रचित या निरंकारिता या मान की कामना नहीं। ऐसे 2 हिंदी में शब्द है। तो सबसे पहली निशानी एक योग्य सेवाधारी की, चाहे मधुबन में, चाहे यहां रहने वाले, चाहे सेवा केंद्र में, चाहे सेवा केंद्र में रहने वाले या सेवा करने वाले वाले, या घर गृहस्थ में रहने वाले, या इस समूचे यज्ञ का कोई भी किसी भी तल का सेवाधारी, उसमें ये 9 निशानियां चाहिए। सबसे पहली निशानी निर्माणता। और निर्माणता के विषय में बाबा ने ढेर सारी बातें कही। पहला पूरा पैराग्राफ निर्माणता के ऊपर है। क्या क्या करेगा निर्माणता वाला, क्या क्या होगा उसके साथ निर्माणता वाला? निर्माण बनना ही सोमान है। निर्माण बनने वाले को दूसरा स्वतः ही मान प्राप्त है। निर्माण बनने वाले को दुआएं स्वतः ही प्राप्त है। निर्माण बनने वाला दूसरों को सुख देखा, जैसे पेड़ झुकता है वैसे उसके आगे सब स्नेह में और प्यार में झुकेंगे, जैसे वृक्ष झुकता है। वो झुकाएगा नहीं, वो मान के पीछे नहीं जाएगा, मान उसके पीछे आएगा, मान उसे स्वतः मिलेगा। तो जो निर्माण अर्थात उसको मान की कामना नहीं, निर्माण अर्थात मान की कामना है अर्थात बोझ है, और बोझ वाला कभी भी निर्माण नहीं। बाबा ने चेकिंग की पॉइंट दी, अगर बोझ महसूस होता है अर्थात अहंकार छिपा है। इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो, बुरा लगा अर्थात अहंकार बहुत बड़ा है, बहुत भरा है अंदर, कूट कूट के अहंकार भरा है, उस अहंकार को ही चोट लगी है। इफ इट हर्ट्स इट इज ईगो, इंग्लिश में कहावत है। तो सबसे पहली निशानी है सेवाधारी की निर्माणता, और जो निर्माण है वो निरंकारी है, और जो निर्माण है वो नम्रचित्त है। ऐसे बाबा ने घुमा घुमा के बहुत सारे शब्द उसमें डाले हैं। निर्माण वाले निरंकारी बन जाएंगे, निरंकारी बनने का साधन है निर्माण बनना, ऐसे अलग अलग वाक्य अलग अलग जगह पर है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन बाबा के। बाबा इस निर्माण में बड़े ही निपुण है। किस निर्माण में? शब्दों के निर्माण में, वाक्यों के निर्माण में। और हमको उस निर्माण करने की क्रिया से ये बता रहे कि तुम्हें निर्माण बनना है, छोटा वाला निर्माण। तो सबसे पहली निशानी सेवाधारी की क्या है? निर्माण। यदि कोई ये सोच ले ये मैं कर रहा हूं, ये मेरे वजह से हो रहा है, अगर मैं ना करूं तो कौन करेगा, ये उसका एक मीठा भ्रम है, जो ये सोच रहा है कि मैं सब कुछ कर रहा हूं। जैसे एक मक्खी एक हाथी के पीठ पर आकर बैठती है। ईसप जैसे भारत में पंचतंत्र है और पंचतंत्र की कहानियां हैं, वैसे विदेश में ईसप की कहानियां हैं, ईसप्स फेबल, और वैसे ही विदेश में लुकमान की कहानियां हैं। लुकमान, उसका नाम आता है मुरलियों में कभी कभी, लुकमान हकीम, उसकी छोटी छोटी कहानियां हैं। तो लुकमान की एक कहानी में एक मक्खी हाथी के पीठ पर आकर बैठ गई और कहा कि तुम्हें अगर कोई तकलीफ हो तो बताना। हाथी ने तो सुना भी नहीं हाथी ने सुना भी नहीं उसने क्या कहा, और हाथी आगे बढ़ते गया और एक पुल से गुजरने लगा। तो मक्खी ने हाथी से कहा, अगर मेरा वजन, अगर वजन जा रहा हो तो बता देना, मैं उड़ जाऊंगी, ऐसा ना हो कि फिर पुल टूट जाए और फिर तुम बोलोगे तुम्हारी वजह से टूट गया। हाथी ने तो सुना ही नहीं, उसको कुछ भिन भिनाहट सुनाई आई कानों में थोड़ी, पर पता नहीं क्या। फिर पुल क्रॉस कर दिया, पुल को पार कर दिया, और मक्खी ने कहा, मेरे भाई हाथी तेरा बहुत धन्यवाद, अब मैं जाती हूं, और वो चली गई। और हाथी ने थोड़ा सा कुछ सुना पर पता नहीं, तब तक वो जा चुकी थी। हम भी ऐसे ही है, जो हमें लग रहा है हम कर रहे हैं, हमारी वजह से चल रहा है, हम नहीं होंगे तो क्या होगा, डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। तुम्हारी वजह से रुका हुआ है उन्नति रुका हुआ है वहां की उन्नति, यह भी हो सकता है। तो सेवाधारी अर्थात निर्माण चित्त, मैं कर रहा हूं, मैं का भाव, कर्ता का भाव हट जाए, ये कर्मयोग है। तो सच्चे सेवाधारी अर्थात निर्माण, और निर्माण का अर्थ है मान की कामना नहीं, मेरा कोई सम्मान करे। बाबा ने कहा है, लोग तुम्हारे गुणगान गाए तो तुम क्या करो, तुम बाप के गुणगान गाओ। सेवा में सफलता हुई तो क्या करो, वर्णन नहीं करो, तुम खुद गीत नहीं गाते बैठो, ये कितनी अच्छी बात बताई। लोग तुम्हारे गुणगान गाए तो तुम क्या करो, बाप के गुणगान गाना चालू कर दो, या कहोगे क्या कहा जरा फिर से तो बोलना, क्योंकि अच्छा लगता है जरा अपनी महिमा सुनने के लिए, बहुत ही अच्छा, आहा जरा एक बार फिर से तो कहना, ठीक से सुना ही नहीं आया। तो खुद की महिमा सुनना और उसमें आहा का अनुभव करना, तो ये निर्माणता नहीं। अतीन्द्रिय सुख से भी बढ़कर कोई सुख हो तो वो सुख मिलता है स्व की स्तुति में, स्व की महिमा में। लोग ये भी जो कहते हैं, हम तो बस आपके चरणों में हैं, ये भी इसलिए कहते हैं, अरे नहीं नहीं आप तो बहुत बड़े हो, ये सुनने के लिए। अगर कोई आके कह दे कि आप तो, हम तो आपके चरणों की धूली, और सामने वाला कहते हाँ बिल्कुल, तो फिर तो बहुत ही दुख होगा क्योंकि हमने इसके लिए तो कहा ही नहीं था, हमने तो इसके लिए कहा था कि सेवा हमने की और हमने कहा कि भाई हम तो कुछ नहीं कर रहे, सब बाबा करा रहा है। नहीं नहीं, फिर सामने वाला कहेगा, हम ये चाहते कि सामने वाला कि, नहीं नहीं पर निमित्त तो आप हो ना, ये भी तो हम चाहते हैं। हाँ वो तो है तो हमारे उसमें भी कुछ छिपा है गड़बड़। सबसे पहली निशानी है निर्माणता, दूसरी निशानी सेवाधारी की, योग्य सेवाधारी की, यथार्थ सेवाधारी की, ज्ञान की अथॉरिटी, वो क्या होगा, ज्ञान की अथॉरिटी होगी। निर्माणता मतलब ये नहीं कि हमारे पास जो ज्ञान है हम डरे, प्रेसिडेंट आके बैठ जाए इसको कैसे सुनाया, वो होगा प्रेसिडेंट, वो होगा कुछ भी, पर उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है जो हमारे पास है। हमारे पास ज्ञान की अथॉरिटी है, सबसे पावरफुल अथॉरिटी, डायरेक्ट भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। इसके लिए निर्भीक होकर किसी को भी हम ज्ञान सुना सकते हैं। कल परसों की मुरली में था ना, जो योगी है उनमें धारणा अच्छी है, और जिसमें धारणा अच्छी है वो अच्छा समझा सकते हैं। बाबा को कौन से बच्चे प्रिय है कल की मुरली में, ज्ञानी और योगी, ये दोनों बहुत प्रिय है उसको। तो ज्ञान की अथॉरिटी, और ज्ञान की अथॉरिटी बनने की विधि क्या है आशीष भाई, ज्ञान की अथॉरिटी पढ़ने की विधि है अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन। ये सारी जो अव्यक्त मुरलियां है, सारी अव्यक्त मुरलियां, एक एक मुरली को घोट घोट के पूरा पी लिया हो। जब इनका अध्ययन होगा ये सारी मुरलियों का, तब हमें अपने आप ज्ञान की अथॉरिटी आएगी। तब तक नहीं आ सकती जब हमारे और उनमें एक अंतर है। इस अंतर को समाप्त करो। इसलिए इनका अध्ययन बहुत जरूरी है, विशेष अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन। वैसे अव्यक्त मुरलियां तो साकार मुरलियों का प्रतिबिंब है। साकार मुरलियों की एक पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एक अव्यक्त वाणी है, उसका एक्सप्लेनेशन मात्र है ये। 26 जून 1969 अव्यक्त वाणी है, ज्ञान अब पूरा हुआ, बाप तुम्हें मिलने आते हैं। ज्ञान अब पूरा हो गया, कब? 69 में। अब बाप क्या करने आते हैं? मिलने के लिए। ये मिलना है, ज्ञान तो पूरा हो चुका है, साकार में ही सब कुछ ज्ञान समाया हुआ है, इतनी गहराई है उनमें। पर उसका एक्सप्लेनेशन, उसका विश्लेषण अव्यक्त वाणी है। इसलिए इनका अध्ययन बहुत आवश्यक है। तो ज्ञान की अथॉरिटी, सेवाधारी अर्थात ज्ञान के हर रास को जिसने जाना है, ज्ञान की गहराई से, ज्ञान का गहराई से अध्ययन किया है। कितनी बार वही वही शब्द सुनते, ये सारे जो जैसा नाम वैसा काम, अलौकिक जन्म पत्री, अधिकार और अधीन, सर्वोच्च समान, अंतिम पुरुषार्थ, भविष्य प्लान, संगम युग, पुरुषोत्तम युग, ये एक एक मुरली उस एक एक वाक्य का पूरा विस्तार है। समानता और समीपता, कितनी सारी बातें है उसमें। स्थिति का आईना, सर्विस, अलौकिक कर्म करने की कला, नष्ट मोह बनने की भिन्न भिन्न वृत्ति युक्तियां, ये सारी मुरलियां और उनके टाइटल, जब तक इनका अध्ययन नहीं, और इनका अध्ययन करने के लिए सबसे जो चीज चाहिए वो है टाइम, समय चाहिए, एकाग्रता चाहिए। एक मुरली पढ़ने के लिए कितनी एकाग्रता की आवश्यक है। ये कोई वैसा नहीं है कि शेक्सपियर का कोई प्ले और संसार की कोई कहानी। ये अव्यक्त वाणी पढ़ने के लिए या संसार का कोई ऐसे बहुत बहुत कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो ही इसको ग्रहण किया जा सकता है। बिना कॉन्सेंट्रेशन के तो हाथ में ही नहीं आता है कुछ। फर्स्ट रीडिंग तो जैसे ऊपर से चली गई। किसी ने बड़ा मीठा सा मैसेज लिख के भेजा है। ये मैसेज आपको पढ़ के सुनाते हैं। एक किसी ने मैसेज लिख के भेजा है, शिव बाबा का होमवर्क। शिव बाबा, इससे इतना सारा, हमसे इतना सारा होमवर्क नहीं हो रहा है। हमने रोज एक अव्यक्त मांगी वाणी मांगी थी, आपने तो अव्यक्त वाणियों का सागर भेज दिया। रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़ने में मजा है, लेकिन इतने सारे में मजा नहीं है, सजा है। 1968 से 2015 तक की अव्यक्त वाणी कैसे पढ़े? फिर अशरीर बनने का अभ्यास, फिर अव्यक्त बनने का अभ्यास, लाइट माइट हाउस का अभ्यास, विदेही बिंदु रूप फरिश्ते का अभ्यास, एक मास 108 घंटे योग का चार्ट। शिव बाबा, हम दिल शिकस्त हो गए, हम इतने सारे होमवर्क नहीं कर सकते। शिव बाबा, सॉरी सॉरी सॉरी। किसी ने बड़ा ही अच्छा बाबा के सामने अर्जी डाली है। पर जो टाइम इधर उधर बातें करने में, खान पान में, घूमने फिरने में, व्यर्थ की बातें करने में जा रहा है, वो अगर अव्यक्त वाणियों के अध्ययन में लगा दे तो, जैसे एक इंग्लिश टीचिंग करने वाला प्रोफेसर, ग्रामेरियन, उसमें भी इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला, एक जगह उसने लिखा है, ऑल द टाइम विच अ मैन वेस्ट एट टी स्टॉल्स मूविंग अराउंड चिट चैटिंग एंड टॉकिंग नॉनसेंस, इफ ही डिवोट्स टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश ग्रामर ही विल बिकम अ परफेक्ट स्पीकर फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यदि कोई व्यक्ति जो समय इधर उधर गवाता है वो अंग्रेजी के व्याकरण में लगा दे तो शायद वो अंग्रेजी जान जाए। तो ये तो एक बात बताई, यहां वहां की बातें और ये सब से हटकर जब इसको टाइम दिया जाएगा तो ही ये काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दूसरी निशानी है ज्ञान की अथॉरिटी। तीसरी निशानी, बेपरवाह बादशाह। आज की मुरली का प्रश्न क्या है, साकार मुरली का? देवेंद्र भाई, आशीष भाई, आज की मुरली का प्रश्न क्या है, साकार मुरली का? अचल भावी को जानते हुए भी तुम्हें सदा निश्चिंत कैसे रहना। हमने बाप की गोद ली है, ये जो विनाश होने वाला है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, हमको पहले से ही बाप ने बता दिया यह सब होने वाला है, इसके लिए हमको नशा है। तो निश्चिंत जीवन, तो तीसरी निशानी है सेवाधारियों की निश्चिंतता, तीसरी निशानी है बेपरवाह, तीसरी निशानी है बेफिक्र बादशाह, निश्चिंत जीवन। कितनी बड़ी चीज है, संसार में कोई है क्या निश्चिंत? कितनी चिंता है, उठते ही चिंता है, दिन भर क्या करना है, क्या करना है, क्या खाना है, इधर भागना है उधर भागना है। ये जीवन एकमात्र ऐसा जीवन है 5000 वर्ष में जो संपूर्ण निश्चिंत है। देवताओं को चिंता है क्या? वैसे नहीं, चिंता तो होगी ना, आज कौन सा खाना खाना है, नहीं बनाने वाले उसको रहेगी। तो ये जीवन सबसे ज्यादा निश्चिंत है। तो ये तीसरी निशानी, निश्चिंतता बेपरवाह बादशाह। चौथी निशानी निमित्त भाव। सब जुड़े हुए शब्द हैं, परंतु बाबा ने अलग अलग थोड़े रीति से प्रयोग किए। तो चौथी निशानी क्या है? इंस्ट्रूमेंट। मैं क्या हूं? इंस्ट्रूमेंट हूं, मेरे मुझे यूज किया जा रहा है, मैं चैनल हूं। वो चाहे तो किसी और चैनल को यूज कर सकता है, ये मेरा भाग्य है, उसने इस चैनल को चुना। बस ये भाव निरंतर कूट कूट के भरना है कि मैं कौन हूं? इंस्ट्रूमेंट हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं, इंस्ट्रूमेंट हूं। इसमें अहंकार नहीं आ जाए कि मैं, जैसे एक तपस्वी था और उसने बहुत घनघोर तपस्या की, कई सालों तक तपस्या की, कई सालों तक, तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी तो एकदम आशुतोष है ना, फटाफट प्रकट होते हैं। उन्होंने कहा मांगो, क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे अमर भव का वरदान दो। उन्होंने नॉट पॉसिबल, ये मैं किसी को देता नहीं। वो कहता मुझे यही चाहिए। उसने कहा नो, उसने कहा यस, उसने कहा नो, उसने कहा यस, मुझे अमर भव का। और जब ये वार्तालाप चल रहा था, जो पत्थर था जिस पर बैठ के उसने 20 साल तपस्या की, उस पत्थर बोल पड़ा। उसने कहा तुमने मुझ पर 20 साल बैठकर तपस्या की, अब मैं तुम पर 20 साल बैठ के बैठूंगा, तब तुम वरदान मांगना। तो उसको समझ में आता है कि ये तो मेरा अहंकार था, तपस्या का अहंकार, तप का अहंकार, साधना का अहंकार, पुरुषार्थ का अहंकार, किस बात का अहंकार। तो चौथी निशानी निमित्त भाव, हमें इस सेवा के लिए निमित्त बनाया गया है। इसके लिए महिमा हमारी हो ही नहीं सकती, महिमा उसकी है। निमित्त भाव। फिर उसके बाद में पांचवा बेहद का भाव, सेवाधारी अर्थात पांचवी निशानी सेवाधारी की बेहद का भाव, अनलिमिटेड भाव। केवल एक डिपार्टमेंट, एक जगह, ये नहीं, एक सेंटर, सारा विश्व, सारा विश्व हमारा है, सारे विश्व की हमको सेवा करनी है, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। एक डिपार्टमेंट में रहते, एक एरिया में रहते, एक सेंटर में रहते, एक जगह अटैच होते हुए भी भाव ऊंचा हो, बेहद का हो, सारे विश्व का उसमें ख्याल हो कि सारे विश्व को यह संदेश चाहे, हमसे कौन से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं, इसके लिए हमारे जो विचार है, हमारा एक संकल्प जो उठ रहा है वो विश्व भर में फैल रहा है। इसके लिए सबसे बड़ी साधना तो है स्व की, कि हमारे विचारों पर, स्वयं के संकल्पों पर अटेंशन, उसमें कितना बेहद का भाव है, परमात्मा प्रेम के संकल्प है, क्योंकि हमारे ही संकल्प विश्व में फैल रहे हैं। और बाबा ने कहा माउंट मधुबन क्या है? स्टेशन, यहां से रिले होगा सब जगह, ये मेन स्टेशन है, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। यहां से जो आप भेजोगे वो विश्व भर में जाएगा, जो हम देखेंगे, जो हम सुनेंगे, जो हम कहेंगे, हमारी आवाज सारे विश्व में फैल रही है। 90.4 चलो वो तो नहीं, वॉइसलेस वायरलेस है, दूर दूर वायरलेस कनेक्शन सोल का है। तो सेवाधारी की पांचवी निशानी बेहद का भाव। सबसे पहला बताया सेवाधारी अर्थात निर्माण, दूसरा सेवाधारी अर्थात अथॉरिटी। अथॉरिटी बनने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा, अथॉरिटी कोई ऐसा ही नहीं बनता है। अगर किसी को जैसे मेडिसिन में या मेडिकल फील्ड में या किसी भी फील्ड में अथॉरिटी बनना है, साइंटिस्ट बनना है, तो कितनी स्टडी करनी पड़ती है। किसी एक सब्जेक्ट में अथॉरिटी बनना है तो उसको दिन रात लगा देना पड़ता है, उसमें दिन रात पढ़ाई करता है, पूरा घेर वो सब्जेक्ट उसके पूरे मन में घुस जाए, तब जाके वो अथॉरिटी बनता है। अथॉरिटी ऐसी नहीं बनता है कोई, उसमें डूब, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, या कोई कलाकार हो, कोई पेंटर हो, चित्रकार हो, उसको डूबना पड़ता है, समय देना पड़ता है, खो जाना होता है उसमें, तब जाके वो अथॉरिटी बनता है, वैसे नहीं बनता है। वो सारा समय लगा देना पड़ता है। कल निखिलेश भाई उदाहरण दे रहे थे ना, अर्जुन रात में क्या कर रहा था, तीर चला रहा था। गुरु ने कहा तुम ये क्या करते हो, उसने कहा अभ्यास, कहां से सीखा, मजले भैया से। जब भीम कहता है कि अंधेरे में भी ये जो उंगली है उनको भी आंखें होती है, अर्जुन अभ्यास, अर्जुन अभ्यास, अगर उंगलियों को आंखें होती है मैं उसी का अभ्यास कर रहा हूं, अर्जुन कहता है। तब वो द्रोणाचार्य उसे दो चीजें कहते हैं, ये अर्जुन एक बात हमेशा याद रखो, योद्धा के सबसे बड़े दो शत्रु है, एक निद्रा और असावधानी। योद्धा के दो शत्रु और दो मित्र, सावधानी और परिश्रम। तो सेवाधारी अर्थात निर्माण, सेवाधारी अर्थात अथॉरिटी, सेवाधारी अर्थात बेपरवा बादशाह, सेवाधारी अर्थात निमित्त भाव, सेवाधारी अर्थात बेहद का भाव। छठवा, सेवाधारी अर्थात नो अभिमान, नो अपमान। नो अभिमान, ये सब जुड़े हुए बातें हैं, पर बाबा ने अलग अलग कहे इसलिए अलग पॉइंट रख रहे हैं उसको। अभिमान नहीं कि मैं ये करता हूं, मैंने ये किया, मेरा ऐसा है, क्योंकि जहां अभिमान ज्यादा होगा वहां पर अपमान की फीलिंग भी ज्यादा होगी। उस दिन हम प्रश्न पूछ रहे थे, ऐसा कोई संसार में है क्या जिसे इंसल्ट फील नहीं होती, शायद ही कोई होगा। हर एक को इंसल्ट फील होती है, और हर एक को इंसल्ट उसी अनुपात में फील होती है जितना उसमें अहंकार है। अहंकार बहुत ज्यादा तो छोटी सी इंसल्ट भी उसको बहुत बड़ी इंसल्ट लगती है, हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट करती है। बाबा का क्या, बाबा ने बाबा का उदाहरण दिया है उसमें, कि एक दूसरे अर्थों में आगे दिया है। बाबा के अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल है संसार में, तो सबसे बड़ा तो यही बताया शास्त्र का, दुर्योधन अहंकारी, उसका इंसल्ट ना होगा। हाँ, गांधी जी का वो जो भाषण दे रहे थे एक सभा में, और एक युवक खड़ा हो गया और उसने गालियां देना चालू किया, तुम कायर हो, तुमको आता नहीं कुछ, तुम डरते हो, और महात्मा गांधी चुपचाप उसको सुन रहे, सारी सभा के बीच में अपमान कर दिया। उसी सभा में वो बैठा था, खान अब्दुल जफर खान, उसने देखा ये क्या है, एक व्यक्ति उठकर सारी सभा के बीच में इतना अपमानित हो रहा है। उसके बाद में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और उसके मन में तब संकल्प आया, और तब उसने फिर खुदाई खिदमतगार नाम की संस्था का शुरुआत की 1930s में, और उसका ही उदाहरण बाबा 1936 से देना चालू कर दी कि तुम हो खुदाई खिदमतगार, सफेद लाल लाल टोपी, लाल कपड़े वाले, रेड रेड शर्ट्स, लाल कपड़े पहनते थे वो, फ्रंटियर गांधी जिसको कहते हैं, सरहद गांधी जिसको कहते हैं, खान अब्दुल गफार खान। उसने देखा उस सभा में कि वो कांग्रेस के अधिवेशन में कैसे एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी का इतना अपमान करने के बाद भी, उसी तरह महात्मा गांधी के जीवन में एक दूसरी कहानी है कि सेंट मैरिट्सबर्ग स्टेशन, पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन में जब वो लोग आए और उनसे कहा कि तुम्हारा वो कहाँ टिकट, तो उन्होंने दिखाया, उसने कहा आउट, तुम ब्लैक हो, उसने कहा मेरे पास टिकट है, फिर भी आउट, नॉट अलाउड, और उनको फेंक देते, वहां से उनको फेंक दिया, ठीक है, क्रोध से भर गए, सोचा कुछ करना है, और वहां रह के अफ्रीका में वो जो ट्रेन जा रही थी दर्बन, वहां पर बीच में वहां उतर के उन्होंने एक नया क्रांति शुरुआत कर दी। अब यही व्यक्ति 40 साल के बाद, ये महात्मा गांधी है जब वो यंग थे, अब 40 साल के बाद, जगदीश भाई जी ने अपनी एक किताब में लिखा है, यही व्यक्ति 40 साल के बाद जब बहुत बड़ा बन गया, तब एक बार ट्रेन में सफर कर रहे हैं, और ट्रेन बहुत भरी है क्योंकि कॉमन बोगी में सफर कर रहे हैं, वहां दो किसान हैं और वो इतने सब लग लग के है, तो इनका ये सो रहे, उनका पैर नीचे आया और एक किसान को लगा, और वो किसान ने बहुत जोर से चिल्लाया, देखते नहीं क्या, सोना बहुत कुछ बोला, फिर उन्होंने पैर थोड़े अंदर लिए और फिर सो गए, पर रात में और नींद लगी, फिर से पैर लगा, वो किसान ने और बहुत उसको कुछ कुछ बोला, और फिर वो व्यक्ति महात्मा गांधी उठ के बैठ गए और सारी रात बैठ के गुजारी। वो एक समय था 40 साल पहले, अपमान हुआ तो वो बहुत फील हुआ उनको, क्रांतिकारी, क्रांति को जन्म दिया, पर अभी भी अपमान हुआ बहुत जबरदस्त। और फिर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी और लोग चिल्लाने लगे महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। इनको लगा दो किसानों को किसको बोल रहे हैं ये। जब ये बाहर आए तो सब लोग हाल पहनाने लगे, तो उनको बहुत शर्मिंदगी लगी, तब वो शर्मसार हुए। तो वही व्यक्ति, बात कहने का भाव, पहले जो एक ये था ना हम, उसको हर्ट हुआ था एक सूक्ष्म तल पर। ये आध्यात्मिक यात्रा बता रहे, वो नहीं कि उन्होंने वो नहीं करना चाहिए था, वो एक दूसरा था उधर का जो आंदोलन किया, पर ये आध्यात्मिक उनकी एक अपनी जर्नी थी, यहां उनको एक दूसरी चीज महसूस हुई। तो अपमान, तो नो अपमान नो अभिमान, जितना बड़ा अभिमान उतना ज्यादा अपमान, यह है सिक्स्थ। फिर सेवेंथ है निर्माण, नो निर्माण का कार्य करेंगे, जो सेवाधारी होंगे वो डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करेंगे, कभी डिसर्विस नहीं करेंगे, ऐसी सेवा कर दो कि जिससे सब डिस्टर्ब। ऐसी भयंकर सेवा करके आए कि जिनकी सेवा की है वो भी डिस्टर्ब, आसपास वाले साथी डिस्टर्ब, सीनियर डिस्टर्ब, सब डिस्टर्ब, सब उल्टा तिल्टा काम करके आए। ये ऐसी सेवाधारी नहीं बनना है। सेवाधारी अर्थात नवनिर्माण। बाबा ने कहा कि सभ्यता की निशानी है असभ्यता की निशानी है जिद करना, और सभ्यता की निशानी है निर्माण बनना, सभ्यता पूर्वक व्यवहार करना, ये सच्चे सेवाधारी की निशानी है। तो सभ्यता असभ्यता, आर्य अनार्य, सातवा। आठवीं निशानी है विजय। दूसरों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग शब्द का प्रयोग किया है बाबा ने, इंग्लिश शब्द, दूसरों को गलतफहमी हो सकती है कि इनकी तो हार हो गई, ये तो हार गए, पर उनकी हार नहीं है, उनको तो निश्चय है, उनकी हार नहीं होती है, उसी में उनकी जीत समाई हुई है। बाबा ने कहा यह शक नहीं लाओ, शक शब्द का प्रयोग किया बाबा ने, यह शक नहीं होना चाहिए हार है कि नहीं है, जैसे आज का प्रश्न साकार मुरली का, अटल है, तुमको निश्चय है, तुम निश्चिंत हो, इसके लिए तुम्हें भय नहीं होगा कि नहीं होगा, हार होगी जीत होगी ये नहीं। सेवाधारी अर्थात सदैव विजयी, एक अव्यक्त संदेश है जिसमें बाबा ने कहा है इस ईश्वरीय सेवा को, इन्वर्टेड कॉमा, इस ईश्वरीय सेवा को सफलता का वरदान बाप द्वारा प्राप्त है। जो भी सेवा हम करेंगे पहले से ही सफलता का उसमें वरदान प्राप्त है, इस ईश्वरीय सेवा को सफलता का वरदान प्राप्त है। तो आठवीं निशानी विजय, और लास्ट निशानी नौवीं, सबको लगेगा यह हमारा है, स्नेह इतना होगा कि सबको क्या लगेगा, अपनापन का भाव आएगा। ऐसी सेवा नहीं कि जो अहंकारी होता है उससे सब दूर भागते, पता नहीं कब क्या बोल दे। आप अपने गेस्ट को घुमाने लेके आए और अचानक कोई मिल गया और ऐसी डिसर्विस कर दी कि हमारी पूरी की हुई सेवा पानी में चली गई। तो कई लोग डरते हैं कि भाई इनसे दूर रहना, इनके पास नहीं लेके जाना ज्ञान सुनाने के लिए, कुछ उल्टा तिल्टा सुना देंगे और ये डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि सब लोगों को सारा ही ज्ञान थोड़ी ना सुनाए होता है। एक बहन ने बीच में मैसेज किया था कि मैं अभी ट्रेन में बैठी हूं और हमारे बीके भाई बहने आ गए और ट्रेन में सेवा चालू है, और ऐसी भयंकर सेवा कर रहे हैं कि पहले से चालू किया और अभी ब्रह्मचर्य का पाठ चालू है ट्रेन में, एक घंटे के अंदर ही। बेचारे सुनने वाले चुपचाप सुन रहे हैं दुखी होकर। तो नौवीं निशानी है अपनापन। तो बाबा ने इतनी नौ चीजें बताई सच्चे सेवाधारी की निशानी, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। पहला निर्माण बनना, निर्माण की बहुत सारी खूबी, उसमें रोब नहीं होगा, यह भी एक जगह कहा है, उसको दुआएं मिलेगी, सुख देगा, वो महान बनेगा और उसको निरंकारी बनेगा और मान मिलेगा, ये सब बातें उसमें कही है। तो पहली निशानी निर्माण, दूसरी निशानी ज्ञान की अथॉरिटी, तीसरी निशानी बेपरवाह बादशाह, चौथी निशानी निमित्त भाव, पांचवी निशानी बेहद का भाव, छठवीं निशानी नो अभिमान नो अपमान, छठवीं सातवीं निशानी निमित्त निर्माण, क्रिएटिव काम करना है, कंस्ट्रक्टिव काम करना है, डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना है, उससे चाहे अच्छा जाके सो जाओ। ये ठीक है, अगर लोग डिस्टर्ब हो रहे हमारे वजह से, क्योंकि जो डिस्टर्ब हो रहे वो कहेंगे तो नहीं सीधा, क्योंकि पता नहीं वो कह दे तो और हम ज्यादा डिस्टर्ब हो जाए, उसका भी डर होता है उनको, इनको कौन कहेगा कि तुम भाई सेवा में आज कुछ दिन के लिए मत आओ, ऐसा कौन कहेगा, कौन इतनी बड़ी रिस्क लेगा? संबंधों की रिस्क, संबंध बिगड़ जाएंगे तो कंस्ट्रक्टिव, उसके बाद में अगला विजय। निरंतर ये निश्चय हो कि विजय हमारी है, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, वरदान हमको प्राप्त है। और लास्ट निशानी अपनापन। अपनापन प्राप्त करने के लिए बहुत सारा कुछ करना पड़ेगा, कितना निमित्त झुकना पड़ेगा। ब्रह्मा बाप ने पैर दबाए, बाबा ने कहा, वो जीसस क्राइस्ट का दिखाया है, उसने अपने शिष्यों के पैर धोए जाने से पहले, सबके धोए। वो कहने लगे, लॉर्ड व्हाई आर यू वॉशिंग आवर फीट, आई वॉश योर फीट सो दैट यू कैन वॉश द फीट ऑफ अदर्स। मैं तुम्हारे पैर धो रहा हूं ताकि तुम दूसरों के पैर धो, क्योंकि दूसरों की सेवा करने में ही हमारी सेवा समाई हुई है। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर यह देखा है मेरी थकान उतर जाती है। दूसरों के सेवा करते करते मेरी अपनी थकान दूर हो गई, अपनी थकान मिट गई। तो ऐसी है। कल की मुरली में थकान के बारे में कुछ था? यहां वहां की बातें सुनने से माथा गर्म हो जाता है। तो ये इतनी नौ निशानियां बाबा ने सच्चे सेवाधारी की बताई। ओम शांति।